Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जो चाहा वो मिल जाए उसे कहते हैं सफलता, पर जो मिला है उसे चाहना उसे कहते हैं प्रसन्नता। जिंदगी में हमें बहुत कुछ मिला है, कई बार हम उसे पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहते। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ जिसे अगर हम जिंदगी भर भी उन्हें शुक्रिया अदा करेंगे तो भी कम होगा। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति भाई जी।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर।
डॉक्टर साहब, बात हो रही थी रिश्तों की। रिश्तों में एक ऐसा रिश्ता जो कहीं ना कहीं अभी जुड़ने वाला है। जब हम यूथ की बात करते हैं, उनकी जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां पर उन्हें आगे बढ़कर किसी और व्यक्ति को अपने जिंदगी में लाना होता है। ऐसे में कई बार बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, उन्हें उनको टाइम देना होता है, साथ ही साथ स्पेस भी देना होता है। आपके हिसाब से जब ऐसा कोई व्यक्ति उनके जिंदगी में आता है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें करनी चाहिए?
देखिए, जब एक डिसीजन हो जाए कि अब वो तैयार हैं जिंदगी के इस पड़ाव पर पहुंचने के लिए, तो ढूंढना शुरू हो जाता है। व्यक्ति खुद ढूंढने लगता है, कई बार माँ बाप ढूंढने लगते हैं, कई बार रिश्तेदार होते हैं वो सलाह देने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली उससे पहले ही बहुत सालों तक, आज के समय में खास तौर में, व्यक्ति ढूंढता नहीं है लेकिन वो स्वतः हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप किसी की ओर आकर्षित होते हैं और वो आकर्षण कई बार ऐसा लगता है कि शायद पूरी ज़िंदगी के लिए, लेकिन कई बार वो आकर्षण ज़्यादा देर तक नहीं रहता। कई बार उसमें झगड़े आने शुरू हो जाते हैं, कई बार कुछ ऐसी कमियाँ महसूस करना शुरू कर देते हैं दूसरे व्यक्ति में, जिससे उनको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि क्या ये व्यक्ति मेरे साथ अगले 50 साल 60 साल तक रह पाएगा या नहीं। सबसे आसान बात है ये देखना कि क्या आपस में दोनों के स्वभाव ऐसे हैं जो कि पूरक हैं। अगर एक व्यक्ति आज मूड ठीक नहीं है तो क्या दूसरा उसे संभाल लेता है? अगर एक व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस को लूज करता है तो क्या दूसरा उसे उठा सकता है? अगर एक व्यक्ति ज़्यादा बोल रहा है तो क्या दूसरा चुप हो सकता है? एक गुस्से में है तो क्या दूसरा शांत होके उसको ठीक कर सकता है? क्योंकि अगर दोनों के बीच में ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी होगी, यानी एक दूसरे के वो पूरक होंगे, तो वो रिलेशनशिप लंबे अरसे तक चलती है। दूसरा, उस रिलेशनशिप में एक ये कशिश होनी चाहिए कि हम इस रिलेशनशिप को दूर तक ले जाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। उसमें कौन सुपीरियर है, किसकी ईगो ज़्यादा है, किसका हाथ ऊपर रहेगा, कौन कंट्रोल करेगा, ये बातें अगर आनी शुरू हो जाती हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं चलती। यहाँ पर एक और भी चीज़ ज़रूरी हो जाती है ये देखने की, और ख़ास तौर पे अगर रिश्ते खुद नहीं बना रहे या बन रहे होते हैं, कि दोनों की लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है। कई बार लोग शारीरिक रूप से आकर्षित हो जाते लेकिन गुणों से आकर्षित नहीं होते। गुणों का ही लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ संबंध कायम करने में फायदा है, क्योंकि आकर्षण जो है वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। आकर्षण किसी और व्यक्ति की तरफ भी जा सकता है, लेकिन अगर गुण एक दूसरे के पूरक हैं या उन गुणों की वजह से आप दूसरे को थोड़ा सा मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो वो लंबे अरसे तक चलेंगे। और ये अभी तक कुछ हद तक कहा जाता था हमारे समाज में कि ये फीमेल को मेल की तरफ पूरक होना चाहिए, पर ये दोनों तरफ से है। मेल को भी उतना ही ध्यान देना होगा फीमेल की ज़रूरतों का, उनकी महत्वाकांक्षाओं का, उनके ज़िंदगी में जो वो बनना चाहती हैं उनका। और अगर दोनों हों, दोनों एक दूसरे को सम्मान देकर चलेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में चल सकता है। अगर मान लीजिए परिवार है, तो परिवार आमतौर पे काफी कटनी छटनी पहले कर देते हैं कि उसके गुण कैसे हैं, क्या बैकग्राउंड है, कितना पढ़े लिखे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अभी के समय में जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, और कुछ हद तक सही भी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने जीवन साथी के साथ जीवन जीना है, माँ बाप की छाया में नहीं, किसी रिश्तेदार ने सलाह दे दी उसके साथ नहीं। वो रिश्तेदार तो एक बार शादी ब्याह करा के
पता नहीं अपने
घर पे चले जाएंगे, लेकिन रहना आपको उस व्यक्ति के साथ है। तो पहले तो ये देखें कि वो व्यक्ति, और कई बार इसके लिए समय भी बहुत कम मिलता है, एक या दो मीटिंग में ही ऐसा होता। लेकिन मैं ये समझूंगा कि अगर मान लीजिए आप कुछ देर के लिए शांत होके दूसरे व्यक्ति से जो भी आपकी बातचीत हुई, वो बातचीत ये भी नहीं होनी चाहिए कि आपको क्या पसंद है, क्या कपड़े डालते हैं, जो कि आमतौर पे बातें हो जाती हैं, या किस तरह की आप प्रोग्राम्स टेलीविजन पे देखते हैं, या क्या पढ़ा लिखा है वगैरह वगैरह, या आपके कौन से हीरो हीरोइन फेवरेट्स हैं। उसके बजाय कि कुछ स्थितियों में, कि मान लीजिए हमें किसी तरह के घर में प्रॉब्लम है तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, अगर माँ बाप के साथ किसी तरह का एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो उन्हें हम कैसे करेंगे, आपका लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप के बारे में क्या गोल है, किस तरह के व्यक्ति के साथ आप जीना चाहते या चाहती हैं, तो ये कुछ बातें हैं जिससे कि आप दूसरे के बारे में पता लगा सकते हैं, उसकी सोच के बारे में पता लगा सकते हैं। और अगर वो सोच बहुत भिन्न है तो फिर कितने हद तक एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने को तैयार है। ये आज के समय हमें, हालांकि कई बार लोग उसको लेके नहीं चलते, कि हर ऐसा रिश्ता जीवन भर का रिश्ता होना चाहिए। कई बार, और हम देख रहे हैं अपने आसपास, ये संबंध टूटते जा रहे हैं कुछ दिनों में, कुछ जगहों पे तो 6 महीने में, 1 साल के अंदर ही मैरिजेस ब्रेक हो रही हैं। और अगर ब्रेक नहीं भी हो रही हैं तो मनमुटाव चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और उसमें दोनों फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, और फिर तू मैं और तुमने क्या कहा, क्यों नहीं कहा, ऐसा कहना चाहिए था वगैरह वगैरह, दूसरों के इंटरफेरेंस वो भी होनी शुरू हो जाती है। तो अगर व्यक्ति दोनों जो कि मैरिज में इन्वॉल्व हैं या मैरिज की सोच रहे हैं, वो ये सोच लें कि हमने अपनी ज़िंदगी को इकट्ठे शुरू करना है, और हमारे लिए कोर प्रिंसिपल जिन्हें कहते हैं, जैसे कंपनीज होती हैं उनके कोर प्रिंसिपल्स होते हैं कि हम अपना काम इस तरह से करेंगे, हम इसको ऐसे आगे लेके जाएंगे, तो परिवार के लिए भी कोर प्रिंसिपल्स होने ज़रूरी हैं, जिसमें कि एक दूसरे के प्रति समानता और एक दूसरे को पूरा सम्मान देना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। दूसरा, कम्युनिकेशन ठीक प्रकार से होना, जिसमें कि बैठ के एक दूसरे की बात को सुना जाए, सिर्फ कहा नहीं जाए,
सुना जाए,
और ये दोनों तरफ से होना चाहिए। कई बार ये लाइसेंस मिल जाता है लड़कों को, ये कहना चाहूँगा मैं कि दूसरे ही मेरी बात सुने, या मैं सुपीरियर हूँ। आज के समय में सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी आपके जो सेक्स है उससे नहीं आती, मेल या फीमेल होने से नहीं आती, किस प्रकार से अपनी बात को आप कह रहे हैं और क्या उसमें सही है, इस चीज़ से आती है। तो अगर एक दूसरे को सम्मान देकर सुन सके, प्लस अपने प्रति भी सम्मान रख सके। कई बार ये देखा जाता है कि बैकग्राउंड से व्यक्ति या तो बहुत पीड़ित रहता है या किसी तरह से दबा रहता है, और जब मैरिज होती है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जितनी भी पीछे की प्रॉब्लम्स थी वो इस मैरिज के ज़रिए पूरी कर लें, और ख़ास तौर पे उन परिवारों में जहाँ पे कि व्यक्त करने का पूरा मौका नहीं मिलता। तो शादी के बाद वो अपने को पूरी तरह से व्यक्त करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो है वो सुन नहीं पा रहा या सुनने को तैयार नहीं है, वहाँ पे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाती है। उसी के साथ साथ कोऑपरेशन, यानी कैसे एक दूसरे के पूरक हों, दोनों इकट्ठे एक ही काम को लेकर चलें, उसमें एक ने ज़्यादा किया किसी दिन दूसरे ने ज़्यादा किया कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्या काम किया ये भी नहीं फर्क पड़ता। आज के समय में बहुत से यंग लोग हैं जो कि बाहर के देशों में जाना चाहते हैं, भूल जाते हैं कि वहां जाके उनको सारे काम खुद करने पड़ेंगे, परिवार के काम भी खुद करने पड़ेंगे। अगर वो यहाँ कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर दोनों कामकाजी हैं, अगर दोनों ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने के बाद दोनों के ही दायित्व बन जाते हैं कि घर को चलाने की जो कला है दोनों को आनी चाहिए।
True. अकेली वाइफ नहीं कर सकती है क्योंकि उन्हें भी तो जॉब करना होता है, वो भी पूरे दिन शायद 12-12 घंटे काम करके आ रहे होते हैं, उसके बाद में अकेले अगर उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वही सब घर का काम करेंगे, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल।
सोसाइटी की अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी रही हैं कि जहाँ पर ये समझा जाता है कि खाना बनाना, साफ सफाई रखना, देखभाल करना चीज़ों की, और बाद में बच्चे तो वही पैदा कर सकती हैं, मेल्स तो कर नहीं सकते हैं,
वो भी उसका
काम है। और अब क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात आ जाती है तो घर में कमा के लाना भी उसका ही काम है, और लड़कियां क्योंकि पढ़ रही हैं तो उन्हें अपनी एजुकेशन को एक्सप्रेशन देना है तो वो भी उन्हीं का काम है, तो बहुत बड़ा बोझ है एक्चुअली।
एग्जैक्टली।
तो कहीं ना कहीं ये समानता जो है, ये समानता हमें अपने लड़कों को सिखानी पड़ेगी।
True.
कि उनका भी एक परिवार को अगर रिश्ता लॉन्ग टर्म का बनाना है, समानता का बनाना है, तो उसमें उनको भी वही चीज़ें करनी पड़ेंगी जो उनका पार्टनर करता है, और इसमें कोई इज्जत की बात नहीं है।
True.
इसमें छोटे बड़े होने की बात भी नहीं है। इसी के साथ साथ एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट सिर्फ कहने से नहीं आती, रिस्पेक्ट वो है जो अगर आप अपने बॉस को देंगे या किसी बाहर वाले व्यक्ति को देंगे, वही आप अपने पार्टनर को घर में दें।
करेक्ट।
और हम घर में टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को कि अच्छा ठीक है, उन्हें तो पता होना चाहिए ना, मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ या रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हम दर्शाते नहीं हैं उसको। और क्योंकि दर्शाते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो कमी महसूस होती है आपके पार्टनर को। इसी के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें कि जो जो पुरानी कमियां रहीं, अगर उन कमियों के बारे में ही हम बात करते रहेंगे, चाहे किसी की खूबसूरती के बारे में, चाहे किसी की जो गुण हैं उनके बारे में, या अगर एक कोई बात किसी दिन पहले कुछ ऐसी हो गई जिसमें कि ऊपर नीचे कोई बात हो गई, उसी को याद दिलाते रहेंगे, तो अगर वो चीज़ें भी होती हैं तो भी एक तरह से दूसरे की इज्जत को कम कर रहे हैं। तो वो अगर नहीं होती तो फिर रिश्ता एक अलग रूप से पैदा होता। मान लीजिए हम कोई कार खरीदते हैं, तो उस कार को खरीदते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब कार को मुझे ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन शादी जैसे सुखद बंधन के बारे में हम ये नहीं सोचते, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसकी कोई पॉलिशिंग नहीं करवाते, उसकी कोई सर्विसिंग नहीं कराते, उसकी साफ सफाई नहीं रखते, उसको ये देख के कि कहीं खटपट हो रही है, कोई आवाज़ें आ रही हैं तो उसको ठीक नहीं करते। बाकी ज़िंदगी की हर चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन रिश्तों को कैसे चलाना है और उसके लिए हमें क्या मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत उसके बारे में बात। तो वहाँ पे अगर दोनों कभी बैठ के थोड़ा समय निकाल के, कभी खेल खेल में ही, अच्छा इस हफ्ते में मैंने ये बात कह दी, कितनी बेचकानी थी, मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को नहीं माना और उस चीज़ को वहीं छोड़ दिया या उसको बार बार जताते रहे, तो फिर दूसरा व्यक्ति भी उसको सोचता रहता है, फिर कहीं ना कहीं जब मौका मिलता है वो उसे और करने की कोशिश करता है या पूरा करने की कोशिश करता है, और वहाँ से फिर चीट धीरे 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 रिश्तों में जो महक है वो कम होनी शुरू हो जाती है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, कोई भी रिश्ता दो तरफा होता है, अगर एक ही तरफ से वन साइडेडली एक व्यक्ति कुछ करता जा रहा है तो उसका कोई सारांश नहीं निकल सकता, दोनों तरफ से अगर सही तरीके के इनपुट्स डाले जा रहे हैं तो एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से ब्लूम कर सकेगा। डॉक्टर साहब कुछ सवाल है हमारे ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहेंगे।
वेलकम।
मेरा नाम निशु है, मैं सागर मध्य प्रदेश से आई हूँ, और मेरा सवाल है कि कभी कभी जॉब में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मैं वो जॉब ही ड्रॉप कर दूँ, इतना प्रेशर हो जाता है, ये करो वो करो, बॉस चिल्लाता है, फिर कभी कभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा स्मूथ लाइफ चाहिए मुझे, नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन हो, प्रेशर हो हर चीज़ का। तो मैं यही सवाल है मेरा कि मैं इसके लिए क्या करूँ अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल कम करने के लिए।
आई एम निकिताशा फ्रॉम सागर मध्य प्रदेश एंड माई प्रॉब्लम इज दैट विच आई सी इज द डिफरेंसेज बिटवीन नाउ अ डेज इन बिटवीन यंगस्टर्स एंड द फैमिली मेम्बर्स एंड विद दैट आई एम नॉट कोपिंग अप विथ एंड देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम विच आई फेस दैट माई थिंकिंग डज नॉट मैच विद माई पेरेंट्स. Sometimes they argue, sometimes I argue with them. So I don't want to argue with them on certain things. There are certain things which we have to discuss, so we have to discuss that. Other than that, I don't want any arguments in my life. I want peace in my life, and also I wanted to work for the welfare of the people also. So I want little support from the society, which I don't see nowadays. So which is that problem which I'm facing. So I want the solution for that.
Dr. Sahab, inka sawal kuch is prakar hai. कि इनकी जो जॉब है इसके अंदर में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, शायद इनके बॉस इनसे बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हैं और फ्रस्ट्रेशंस, डेडलाइंस इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं जिसके वजह से ये अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं और वो जॉब छोड़ने तक का उनका फीलिंग आ गया है. और दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनके जो पेरेंट्स हैं इनके साथ में इनकी बनती नहीं है ज़्यादा, वो चाहती तो हैं कि चीज़ें बेटर हो, पीसफुल लाइफ हो, लेकिन पेरेंट्स के साथ में इतना झगड़ा हो जाता है, कई बार ये गलत होती हैं, कई बार उनके पेरेंट्स गलत होते हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि झगड़ा होने लगता है. तो वो जानना चाहती हैं कि किस तरह से बैलेंस क्रिएट कर सके वो और सब कुछ पीसफुल हो जाए.
देखिए ऑफिस में बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति काम करता है उसकी एक पर्सनल ज़िंदगी भी है, पहली बात तो ये है, और वो उस ज़िंदगी को कुछ हद तक ऑफिस में भी लेके आता है. मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूर से आता है और हर दिन ट्रैफिक से जूझता हुआ आता है, या मान लीजिए किसी के घर में कोई बहुत बीमार है, या मान लीजिए उसके मन पे कुछ और टेंशन्स चल रही हैं, या फाइनेंशली कुछ लोन्स चल रहे हैं, या जो उसकी महत्वाकांक्षाएँ थी वो पूरी नहीं हुई. अब वो इनके बॉस तो बन गए, लेकिन वो बॉस जो हैं अपनी उन सब फ्रस्ट्रेशंस को, स्ट्रेसेस को अपनी रिलेशनशिप में एज एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बॉस एंड जूनियर लेके आएंगे. अगर वो कुछ कहते हैं, आवेश में कहते हैं और कह के उसके बाद चले जाते हैं, उसके बारे में पहले तो सोचना बंद कर दें.
ओके.
जो उन्होंने काम के बारे में बात की, जो इधर उधर की बात की, आमतौर पे हमारा ध्यान उसमें जाता है और हम उसी की वजह से परेशान होने लग जाते हैं. जो काम के बारे में बात हुई या इंस्ट्रक्शंस हुई उनको भूल जाते हैं. लेकिन ये मिलते सिर्फ काम के लिए, ऑफिस काम के लिए होता, तो वहाँ पर काम की बात को फोकस रख के अपना काम पहले तो ये अच्छी तरह से ज़रूर करते रहे. वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर किसी अभद्र भाषा का, गाली गलौच का प्रयोग हुआ है, या कभी कोई फिजिकल बात हुई है, या बहुत सारे लोगों के सामने उन्होंने इनको कुछ कहा है, या इनकी कोई पर्सनल चीज़ को उन्होंने कहा है, या फैमिली के बारे में कुछ कहा है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. एंड एक्चुअली आज के समय में स्पेशली अगर वुमेन के बारे में अगर देखें, तो ये सारे जो बिहेवियर्स हैं ये बिहेवियर्स हैरेसमेंट में आते हैं. सो लॉफुली भी ये बात ठीक नहीं है. तो उसके लिए ये लड़ सकती हैं, उसके लिए पहले पॉइंट आउट कर सकती हैं कि आप काम के बारे में जो कहना चाहते हैं, आई एम विलिंग टू डू दैट वर्क इन अ प्रॉपर वे, लेकिन बाकी पर्सनल चीज़ों को ना कहें तो अच्छा है. और उसको भी पॉसिबली एक खुले फोरम में बाकी लोगों के सामने ना कहें, क्योंकि वो कई बार बहुत थ्रेटनिंग हो जाती है, उनको लगता है कि ये मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं.
और फिर ईगो पे आ जाता है,
फिर बात ईगो पे आ जाती है, फिर आपस में सिर्फ ईगो
क्लैशेस
होने लगते हैं. तो अगर वे जाके उनके ऑफिस में बात कर पाए कि मुझे आपने कुछ कहा, आप काम के बारे में कहें, दैट इज फाइन, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरह से काम करूं ताकि आपको गुस्सा ना आए. अब आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे सलाह मांग रहे हैं कि कि आप मुझे बताएं कि काम को कैसे अच्छा किया जाए। अगर फिर भी प्रेशर्स बहुत हैं, डेडलाइंस बहुत हैं, तो देखने की ज़रूरत है कि क्या वो अमानवीय हैं, क्या वो किसी के लिए भी करना पॉसिबल है। अगर नहीं है तो उसके बारे में बात ज़रूर की जा सकती है कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी है और आप 12 घंटे का काम दे रहे हैं, कभी कभार एक अलग बात है, लेकिन रोज़ दे रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। कई बार इन्होंने मान लीजिए कोई ऑफिस ज्वाइन किया लेकिन उनकी काम करने की क्षमता नहीं है, या जिस तरह का काम है वो उनको अभी नहीं आता,
करेक्ट,
या अभी सीखा नहीं हुआ है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। उतना समय अपने आप को दे। देखिए, जॉब चेंज करना बहुत आसान है लेकिन जॉब चेंज करके उसको सस्टेन करना मुश्किल है।
True.
तो अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को डील कर पाएंगे तो बाकी सिचुएशंस को डील करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसमें अगर इनकी स्थिति बनी रहे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार आपकी अपनी स्थिति इतनी डाउन हो जाती है कि आप फिर या तो हताश हो जाते हो या काम छोड़ देते हो या बातें करने लग जाते हैं या दूसरों को कहने लग जाते हैं कि देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर वो बात पॉलिटिक्स में फंस जाती है। तो अगर सिर्फ बेसिक मुद्दा काम, अच्छा काम कैसे डिलीवर करूँ जितना पॉसिबल है, जितनी मेरी स्किल्स हैं, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि उसके बावजूद भी वहाँ का माहौल सही नहीं है या इनकी बात को नहीं सुना जा रहा या बहुत ज़्यादा पर्सनल कमेंट्स हैं या लॉन्ग टर्म के लिए वो उसे सस्टेन नहीं कर पा रही, तो दुनिया में और बहुत जॉब्स हैं। वो जॉब जो आप कुड़ के रोज़ करते हैं वो आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। आपकी सेहत पर भी उसका असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं रिश्तों पर तो असर पड़ ही रहा है। शायद आप भी कुछ ऐसी बात किसी को कह दें जिसे आप ना पसंद करें और सही ना हो, तो तब ऐसी सिचुएशन में बेहतर है कि वहाँ से हट जाया जाए।
जी,
जो पेरेंट्स के साथ उनका
झगड़ा
है, देखिए कई बार वो झगड़ा भी नहीं होता, कई बार वो कहने का तरीका होता। एक व्यक्ति ने कुछ कहा और दूसरे ने इमीडिएटली उसके लिए रिएक्ट किया और फिर पहले ने रिएक्ट किया और फिर वो एक्शन रिएक्शन ही चलता रहता है। जो बात कही वो मुद्दा ख़त्म हो जाता है। तो अगर कोशिश ये करें कि पहले जानने की कि पेरेंट्स कह क्या रहे हैं और फिर उसके साथ कि उन्हें किस बात पे गुस्सा आ रहा है। कई बार ये होता है कि जो गुस्से करने की बात है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद भी अपने आप को सक्षम नहीं महसूस कर रहे, इसलिए उनको इरिटेशन ज़्यादा हो रही है। और पेरेंट्स को अगर आप वो बड़े डिफाइंड तरीके से कह रहे हैं या इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो पेरेंट्स को कई बार ज़्यादा बुरा लगता है। तो अगर आप खुद इज्जत देकर, और उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है कि जब आपको पता लगे कि गुस्सा थोड़ा सा मुझे अंदर से इरिटेशन हो रही है, तो कोई ना कोई सिग्नल रख लें, क्योंकि पेरेंट्स के साथ इन्होंने पूरी ज़िंदगी रहना, रिश्ते ने तो ज़रूर रहना। तो और ये ऐसा एक रिश्ता है कि आप थोड़ा सा खुल के कह सकते हैं, तो उस समय कोई ना कोई सिग्नल रख लें, हाथ खड़ा कर दें, कुछ शब्द ऐसा बोल दें कि अब मैं अंदर से परेशान हो रही हूँ, और जब दूसरे को पता लगे तो वो भी वहाँ से थोड़ी देर के लिए विड्रॉ कर जाए। बेसिक पर्पज़ ये है कि बात को इतना ना आगे बढ़ने दिया जाए कि उसकी वजह से एक दूसरे को हर्ट करें। क्योंकि जब आप इमोशनली हर्ट होते हैं तो बहुत देर तक चलती है, और उसकी वजह से फिर आप दूसरे को हर्ट करना चाहते हैं, और शायद वही एक्शन रिएक्शन इनके बीच में चल रहा है। एक और तरीका हो सकता है जो कि पूरी फैमिली इसका फ़ायदा उठा सकती है, कि जो जो मुद्दे हैं जिन पर आमतौर पर झगड़े होते हैं, और हर परिवार में कोई 3-4 मुद्दे होते हैं, खाने को लेके होते हैं, सोने को लेके होते हैं, टेक्नोलॉजी को लेके होते हैं, ना पढ़ने को लेके होते हैं, रिलेशनशिप को लेके पढ़ होते हैं, तो वैसे एरियाज़ को लिख लिया जाए और उन 3-4 मुद्दों के बारे में किसी दिन बैठ के कहा जाए कि अच्छा हम बात करेंगे आज, झगड़ा नहीं करेंगे। अगर झगड़ा हो रहा होगा तो हमें से कोई सॉरी कह के शांत हो जाएगा। तो उस मुद्दे में एक दूसरे की बात को समझना तो शुरू करें कि दूसरा क्या चाहता है, क्यों कह रहा है। देखिए, परिवारों में आमतौर पर लोग एक दूसरे को प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और इसलिए ये चाहते हैं कि वो हर्ट ना हो।
True.
लेकिन हर्ट से बचाते बचाते कई बार आप और ज्यादा हर्ट कर देते हैं। तो जो बेसिक कारण है जिस वजह से झगड़ा हो रहा है, उस वजह को डिस्कस कर लें, और डिस्कस करने के बाद बहुत आसानी से एक किसी दिन जब कोई बात ठीक हुई तो फिर उसके लिए एक दूसरे को थैंक यू बोल के और आगे से वो ना रिपीट हो उसके बारे में प्लान कर सकते हैं।
जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि रिश्तों में मिठास अगर भरनी है तो कहीं ना कहीं हमें कई बार झुकना भी पड़ेगा, कई बार सामने वाले व्यक्ति को इतना तवज्जो भी देना पड़ेगा, कई बार चीज़ों को उसी तरीके से देखना चाहिए जैसे वो होते हैं, ना कि कोई और नज़रिए से देखना, तो ऑटोमेटिकली सभी रिश्तों में मिठास आ जाएगी।
जी,
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो।
प्लेजर, थैंक्स अ लॉट।
दोस्तों, आज के एपिसोड से हमने ये सीखा कि अगर रिश्तों में थोड़ी सी भी मिठास भरनी है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे पहलुओं को एक साथ लेके चलना होता है। भले ही कितनी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हो चुकी हैं, अगर आप दो वक्त साथ निकाल कर बैठें और डिस्कस करें कि क्या इश्यूज़ हैं, तो आप महसूस करेंगे कि कोई भी रिश्ते में आप मिठास भर सकते हैं। साथ ही साथ यूथ्स जो कि रिलेशनशिप की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से समझ लें कोई भी रिश्ते में ढलने से पहले, क्योंकि अगर वो डिस्कस करेंगे तो वो महसूस करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति उनकी बात समझ भी पा रहा है या नहीं। ऐसे में सही रिश्ता क्रिएट होगा और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाएगा। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।